ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर से रहिए व्यस्त और आत्मा से रहिए मस्त। हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। जय श्री कृष्ण। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल एवरीवन। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्णा। ओम नमो शिवाय। आज के सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, और जो हमें पॉडकास्ट पे हम लोगों को सुन रहे हैं उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कार्तिक मास की जय। आई होप कि मैंने जो ऑडियो डाला था आपको पंचभिखम काष्ठी के लिए, है ना, कि जो आप नहीं कर पाए जो कार्तिक मास, तो आप ये 5 दिन भी व्रत कर सकते थे, कोई भी संकल्प ले सकते थे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने जरूर कुछ ना कुछ संकल्प लिए होंगे। आई थिंक परसों लास्ट डे है फ्राइडे को, तो हम जरूर इसके बारे में एक सेशन लेंगे और सबसे बात करेंगे कि आप क्या क्या कर पाए और कितना परसेंटेज में कर पाए, है ना। और अभी जिसने बिल्कुल भी नहीं किया तो अभी भी 2-3 दिन बचे, तो आप फिर से संकल्प ले सकते हो, है ना। तो भगवान का नाम के लिए ये नहीं है कि जो दिन बीत गया उसके बारे में नहीं सोचना, जो हम कर सकते हैं अगले 2 दिन बचे हैं तो हमें उसमें भी कोई ना कोई संकल्प ले लेना है ना। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है कि हम चैप्टर 6 अध्याय 6 कर रहे हैं हम, है ना। अध्याय 6 ध्यान योग के बारे में हम बात कर रहे थे। हमने उस दिन 3 वर्सेस किए थे, तो उसमें हमने मन के बारे में बात की थी। मन और बुद्धि के बीच का अंतर समझा था, है ना। हमने समझा था कि भगवान कह रहे हैं कि मन ही आपका मित्र है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जो मन सांसारिक गतिविधियों में लगा रहता है वो सबसे बड़ा शत्रु है, और जो मन संसार से हटकर ईश्वर के प्रेम में लग जाता है वो ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है। मीन जो मन डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में लगा रहे, टाइम पास एक्टिविटीज में लगा रहे, वो हमारा दुश्मन है। और जो डिवोशनल एक्टिविटीज में चल पड़े, भक्ति में आगे बढ़ चले, वो ही हमारा बेस्ट फ्रेंड है। तो हमें अपनी बुद्धि को दिव्य बनाना है ना। इसकी ट्रेनिंग मन की, मन को साधने की ट्रेनिंग बुद्धि को ही देनी पड़ती है ना। तो हमें समझना है कि हम मन के दास नहीं, मन को हमें अपना दास बनाना है ना। और फिर हमने समझा था श्लोक नंबर 7 में कि जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, है ना, क्योंकि उसने ही शांति प्राप्त कर ली है। इसका रीजन ये होता है कि कंट्रोल्ड माइंड होता ही तब है जब परमात्मा की कृपा होती है, है ना। परमात्मा की कृपा के बिना देखो हम मन को नहीं साध सकते, है ना। जब भगवान का किसी के साथ कनेक्शन है तभी मन भी कंट्रोल में आता है। देखो अगर किसी ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो समझ लो उसका मन वश में आ गया, क्योंकि उनकी कृपा से ही मन वश में होता है। इसका रिजल्ट उसको शांति मिलती है। तो मन को वश में करने से ऑटोमेटिकली परमात्मा के आदेश का पालन होता है ना। और भगवान से जुड़कर ही, कॉन्शियसनेस में आकर ही ये दिव्य स्थिति प्राप्त होती है। इसलिए ऐसा भक्त फिर संसार के द्वंद्वों, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान आदि से प्रभावित नहीं होता। कुछ भी आ जाए जिंदगी में, सुख दुख तो देखो चलते रहते हैं, उसको समझ आ जाती है कि भाई ये तो ड्रामा है, है ना, ये तो एक सीन के बाद दूसरा सीन आना है ना। सुख आए हैं तो दुख आएंगे फिर, है ना। सर्दी के बाद जैसे गर्मी आती है वैसे सुख और दुख चलते रहते हैं, है ना। तो वो फिर वो विचलित नहीं होता। तो ये क्योंकि ये द्वंद तब तंग करते हैं जब मन वश में नहीं होता। जब मन कंट्रोल में हो जाता है उसको, तो फिर उसको हायर टेस्ट मिल जाता है। उसको ये सब बातें जो सुख दुख है, मान अपमान है कि मेरा उसने मुझे ये बोल दिया, मुझे वो बोल दिया, सब बातें उसको फिर फालतू की बातें करने लगने लग जाती है, है ना। अपनी बातें भी, जो दूसरा भी कर रहा होता है उसको भी लगता है कि यार क्यों ये बातें इस बारे में बात कर रहा है ना, क्यों फालतू की बातें हमें करनी ही नहीं है। फिर नेक्स्ट वर्स में हमने समझा 16 में, हमारी लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। खाना और सोना बहुत जरूरी है ना। देखो भजन का भोजन से सीधा संबंध होता है कि हम कैसा भोजन करते हैं। जैसे हमने सुना होता है ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, है ना, हमने सुनी होती है ना बातें, है ना। तो ये सिर्फ बातें नहीं है, ये हमारी शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं, है ना। क्योंकि मेडिटेशन है ना जो, उसका सीधा संबंध मन से। हम मेडिटेशन क्यों करते हैं कि मन को हम कंट्रोल में कर सके, है ना। तो मन को वश में करने की बात हो रही है। जो भी हम खाते हैं, है ना, जो भी हम खाते हैं, पानी पीते हैं, उसका हमारी ग्रॉस बॉडी पे तो असर होता है, हमारे शरीर पे तो असर होता है, लेकिन हमारी सटल बॉडी जो हमारे मन बुद्धि अहंकार है उस पे भी असर होता है। हमारे मन पर इसका असर होता है जो भी हम खाते हैं। तो सटल बॉडी का, हमारे सूक्ष्म शरीर का पार्ट है मन, इसलिए हम जो भी खाते हैं वो मन में जाएगा। तो और सोना भी है, अगर आप जैसे कम सोते हो तो भी हम फ्रेश नहीं हो पाते, अगर हम ज्यादा सोते हैं तो हम लेजी हो जाते हैं, है ना। और जो बहुत ज्यादा खाता है या कम खाता है ना, तो वो मतलब दोनों चीजें हमारे लिए सुटेबल नहीं है, है ना। तो बैलेंस होना चाहिए हमारे खाने पीने में, है ना। जैसे सब्जी में नमक हम डालते हैं तो मतलब बैलेंस होना चाहिए ना सब्जी में नमक का, है ना, ना ज्यादा ना कम। और फिर हमने समझा कि हमें अपने मन को अपना मित्र बनाना है और अपने जीवन में बैलेंस लाना है, और परमात्मा के साथ जुड़कर हमें अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। सबसे बड़ी बात देखो, हमें अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में डिसिप्लिन लाना है। कंफर्टेबल लाइफ उसी की होती है, बैलेंस्ड लाइफ उसी की होती है, हैप्पी वो ही रह सकता है जिसकी लाइफ में डिसिप्लिन हो, बैलेंस हो। देखो 16-17 दोनों ही वर्सेस में भगवान ने बैलेंस की इंपॉर्टेंस बताई है ना, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए भी और मटेरियल लाइफ में भी आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो मटेरियल लाइफ में भी हमें आगे बढ़ना हो तो हमें मन को बैलेंस करना पड़ता है ना, है ना। अगर हमें अपना मान लो किसी ने IAS की पढ़ाई करनी है या IIT निकालनी है तो उसको कितना कंट्रोल करना पड़ता है मन को, है ना। उसको अपने दिन के 17-18 घंटे उसको पढ़ाई करनी पड़ती है, तो कितना वो अपने मन को कंट्रोल करता है, है ना। और एक एक मॉडल है मान लो, है ना, या जिसने अपने सिक्स पैक बनाए हैं बॉडी बिल्डर, तो उसका भी मन देखो कितना कंट्रोल में होता है कि उसने अपना खाने पीने का अपना लाइफस्टाइल कितना बैलेंस किया होता है। वो क्या कर रही है, कहीं ना कहीं वो ये मटेरियल लाइफ की अचीवमेंट्स है जो वो प्राप्त करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। यहाँ बताया गया है कि अगर हमें स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है तब भी हमें मन को बैलेंस करना है, और मटेरियल लाइफ में भी हमें आगे बढ़ने के लिए मन को साधना बहुत जरूरी होता है ना। तो अगर हम लोगों को खाने पीने में सोने में ही अगर हम अपना समय, जो हमारा कीमती समय, हमें जो एक मनुष्य जीवन मिला है उसको ही हमने खाने पीने सोने में ही अपना व्यर्थ गवा दिया, तो फिर हम प्रोडक्टिव काम कैसे कर पाएंगे। कोई भी, चाहे मटेरियल काम हो, चाहे हम भक्ति करनी है हमें, तो वो काम हम कब कर पाएंगे। स्पिरिचुअल हेल्थ की का इम्प्रूव होना भी बहुत जरूरी है, मेंटल हेल्थ के लिए भी हमें चीजें करना जरूरी होता है, फिजिकल हेल्थ भी जरूरी है, फैमिली हेल्थ भी जरूरी है, और फाइनेंसेस को भी मैनेज करना जरूरी है। तो हमें भक्ति के साथ साथ हमें लाइफ के हर एक कंपोनेंट में बैलेंस लाना जरूरी है। भगवान की सारी इंस्ट्रक्शंस हमारी आज की जिंदगी को भी सुधारेगी और साथ साथ में हमें भगवत धाम भी लेकर जाएगी। हम सबको अपनी लाइफ में बैलेंस लाना है, और वो भी वो ही प्रभु से ही जुड़ने का तरीका है। देखो जिसकी बैलेंस लाइफ होगी तो वो ऑटोमेटिकली होगा कि वो प्रभु से भी जुड़ सकता है ना। और आज की जिंदगी में भी खुश रहने का तरीका है ना। ये नहीं है, अब हम ये बात कर रहे हैं तो ये नहीं कि लाइफ डेथ के बाद कोई जिंदगी होगी उस पर हम खुश रह पाएंगे, है ना। देखो भगवत गीता हमें आज की जिंदगी में भी खुश रहना सिखा रही है ना? आज की जिंदगी को कैसे हम रेगुलेट करें, आज की जिंदगी को कैसे हम खुश रह सकते हैं, आज की जिंदगी में कैसे बैलेंस ला सकते हैं, ये भी हमें भगवान श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं, है ना। तो अगर हम अपनी लाइफ को रेगुलेट करेंगे तो हम शांत हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, हमें पेशेंस बढ़ेगी, है ना, हमारे दुख कम हो जाएंगे, और हमें जो लगते भी है ना कि जो दुख एक्चुअली हमारे जो एक्चुअली 10% दुख होते हैं, बाकी तो दुख हमने खुद के बनाए होते हैं, है ना, फालतू के टेंशन्स बना के ओवर थिंकिंग कर करके वो दुख हमने क्रिएट किए होते हैं 80-90%, है ना। जो 10% एक्चुअल दुख होते हैं, तो अगर वो आए भी दुख जीवन में तो उसको डील करने की हमें पावर मिलती है भगवान से, और साथ साथ में हम भगवान के धाम भी चले जाएंगे। तो यही हमें भगवद गीता हमें सिखा रही है। हाँ जी, नेक्स्ट श्लोक पढ़ लो नैना जी। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल एवरीवन। हाँ जी, चैप्टर 6 श्लोक 19। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक खिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वे आत्म तत्व के अधीन ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। देखो अब यहाँ पर ना इस श्लोक में अब हाईएस्ट लेवल के डिवोटी की बात हो रही है ना, जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया हुआ है। तो इसमें भगवान एक दीपक का उदाहरण दे रहे हैं कि जहां पर हवा ना हो, जिस जगह पर, है ना, वहां पर दीपक की ज्योति हिलती नहीं। एक कमरे में जलाते हैं दीपक को तो उसकी ज्योति है जो आराम से जल जाती है ना, लेकिन अगर हम बाहर इसको लेके जाए बालकनीज में, है ना, तो वो उसके बंद होने के, अगर हवा चल रही है तो उसके बंद होने के चांसेस होते हैं, है ना। तो इसमें भगवान हमें ये बता रहे हैं कि जो योगी, जो लोग भगवान से मतलब बहुत जुड़ जाते हैं, हाईएस्ट लेवल के डिवोटी की बात हो रही है, इस रास्ते में जो बहुत आगे बढ़ जाते हैं ना, वैसे ही उनका मन भी जो होता है ना वो आत्म तत्व के ध्यान में स्थिर रहता है। मतलब यानी कि भगवान के साथ उनका अच्छा कनेक्शन हो जाता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है ना, कि बाहर की लाइफ में कुछ भी चल रहा हो ना, लेकिन अंदर से वो फिर डिस्टर्ब नहीं होते। मतलब इसमें बताया गया जो योगी होते हैं ना, जो हाईएस्ट लेवल के डिवोटी होते हैं, जो भगवान से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं, उनको ना वर्ल्ड में फिर कुछ भी हो जाए, उनके लाइफ में कुछ भी हो जाए, कोई भी सुख आ जाए, दुख हो जाए, अदुख आ जाए, मान आ जाए, अपमान आ जाए, है ना, कोविड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, कुछ भी आ जाए उसके जीवन में, है ना, वो संभाव रहते हैं। उनको समझ आ जाता है कि ये दुखाले है, ये ड्रामा है, ये चलता रहेगा। वो देखो, वो उनको पता है कि ये ड्रामा है, ये ड्रामे में जैसे सीन चेंज होते हैं ना, तो वैसे ही सीन चेंज होगा। अभी सुख का समय है तो दुख का समय आएगा, है ना, तो मुझे विचलित नहीं होना। ये दुख का, जैसे सुख का समय नहीं रहा तो मेरे दुख का समय भी नहीं रहेगा। देखो, कोई ऐसा समय था जब हमें कोई प्रॉब्लम ना आई हो, है ना? मुझे नहीं लगता जीवन में कोई ऐसा समय होता है जब कोई प्रॉब्लम नहीं आती हमें, है ना। एक प्रॉब्लम आती है, वो सॉल्व होती है, फिर वो नेक्स्ट प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, है ना। तो वो ये सब चलता रहता है ना। तो भगवान यही बता रहे हैं कि भाई जो समझ जाता है ना, जो मेरे साथ जुड़ जाता है, वो एक्चुअली समझ जाता है कि भाई प्रॉब्लम्स तो आनी है, सुख दुख आने हैं, तो उसको उसको फिर दुखी नहीं होना। वो फिर परमहंस बन जाते हैं, वो फिर परम योगी बन जाते हैं। जैसे मान लो अगर आप गाड़ी चला रहे हो, है ना, तो ऑटोमेटिकली है कि आप गाड़ी चला रहे हो ना, तो आपका गाड़ी चलाने में ध्यान नहीं होता। जैसे हम गाड़ी चला रहे हो तो हमारा ध्यान सिर्फ, जैसे हम खाना बना रहे होते हैं तो हम क्या रहते हैं, हमारा ध्यान खाना बनाने में होता है। हमारा मन कहाँ कहाँ नहीं भटकता, है ना, हम कुछ ना कुछ हम हमेशा सोच रहे होते हैं। हम लोग अपने फैमिली के बारे में सोच रहे होंगे, हम अपनी फाइनेंसिस के बारे में सोच रहे होंगे, अपने बच्चों के बारे में सोच रहे होंगे, या जो जॉब पे हैं तो वो घर के बारे में सोच रहे होते हैं, है ना, अपने बॉस के बारे में सोच रहे होंगे जो गाड़ी में होंगे, तो है ना, कुछ भी चल रहा होता है हम लोगों के मन के अंदर। और योगी कौन होता है? देखो, योगी मतलब जो बहुत हाईएस्ट लेवल के डिवोटी होते हैं, जो भगवान से एक्चुअली जुड़ जाते हैं ना, गाड़ी तो चला रहे होते हैं जीवन की, लेकिन जो जहां रिक्वायरमेंट है ना वो ड्यूटी की, लेकिन इंटरनली अंदर से वो उनका भगवान के साथ योग हो गया होता है। जैसे हमने गोलोक एक्सप्रेस का है ना एक कोटेशन, बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल, है ना, वो देखो चीजों से ना इतना ज्यादा अटैच नहीं होते फिर, है ना, मतलब उनको पता है कि ये मेरी ड्यूटी है तो मुझे करनी है, है ना, इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा उससे वो फिर नहीं बंधते जीवन को, मतलब वो सहज ढंग से लेते हैं। देखो, अब भगवान कृष्ण को हम देखें, कितना संघर्षों भरा जीवन था उनका। उनको देखा हमने कभी दुख में या परेशानी में? उनको हमेशा हमने हंसते हुए जीवन जिया उन्होंने, है ना, वो हर चीज में इन्वॉल्व थे लेकिन उलझे बिना। तो हमें भी उनसे यही सीखना है कि हमें इन्वॉल्व होना है हर चीज में, लेकिन हमें उलझना नहीं है। हम शामिल हो सकते हैं चीजों में, हम चीजों को अच्छे से, हमें अपनी चीजों को अच्छे से, अपने जो भी ड्यूटीज मिली हमें भगवान ने दी है उनको बढ़िया ढंग से हमें करना है, है ना, लेकिन उससे फिर उससे इतना घुस नहीं जाना है, इतना अटैच नहीं हो जाना है ना। यही सोचना भी, जीवन को एक सहज ढंग से लेना है। मतलब देखो, सुख में तो हम सहज रहेंगे, है ना, मतलब नॉर्मल रहेंगे, लेकिन जो टफ सिचुएशंस हैं मेन, तो उसमें भगवान की हमारी परीक्षा लेते हैं, है ना, तो हमें टफ सिचुएशन में भी उसको ठीक से डील करना है ना, क्योंकि हम हमेशा के लिए तो यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं ना, ये हमेशा सोचना है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाने वाले हैं, है ना, तो कोई भी प्रॉब्लम आ गई है ना, तो उसको सहज ढंग से लेना है। जहां पे हम बहुत ज्यादा टफ लग जाता है हमें, ओ नहीं क्या हो गया मेरे साथ यार, मेरे साथ ही ऐसा होता है, जहां पे हम ये बहुत ज्यादा अपने आप को बेचारा बना लेते हैं, जहां पे हम बहुत सोच लेते हैं कि नहीं यार मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ही ऐसा होता है ना, जहां पे हम बहुत लाइफ को बहुत सीरियसली ले लेते हैं, तो फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, है ना। हमें ये सोचना भी भगवान श्री कृष्ण के जीवन से, उनका उनके मैसेज समझने हैं, है ना, कि भाई ये लाइफ मिली है तो इस लाइफ को मुझे बेस्ट वे में जीना है, है ना, उसमें जो सुख आएंगे दुख आएंगे ये भगवान की तरफ से अगर आए हैं मुझे, या अपने कर्मों की वजह से मुझे आए हैं, तो मुझे उसको बेस्ट वे में उसको डील करना। तो योगी वैसा होता है, मतलब उसका इंटरनली अंदर से उसका भगवान के साथ योग हो गया होता है। तो ये हाईएस्ट अवस्था है जिसमें वो हमेशा भगवान के साथ जुड़ी हुई सोच रखता है, हर एक कर्म को भगवान की कॉन्शियसनेस यानी भगवान से के सेवा वाले भाव से करता है। देखो, अभी हम जहाँ पे हैं हम, है ना, ये सब कर पाना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, है ना, क्योंकि हमने सुना होता है ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो विद टाइम धीरे धीरे परसेंटेज में हम भी ये सब चीजें महसूस करना शुरू कर देंगे, हमारे जीवन में भी इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगी, है ना, और उसका प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमें फायदा मिलता है। जितना जितना हमारा मन और बुद्धि भगवान के साथ जुड़ेंगे ना, उतना उतना स्टेबिलिटी, उतना उतना फोकस हमें बढ़ेगा। अभी तो मन में हमारा कितना कुछ घुसा होता, कितनी बातें हमारे अंदर होती हैं, कितनी बातें हमारे अंदर चल रही होती, तो फोकस नहीं आता फिर, है ना। और फोकस का सबको पता है कि लाइफ की सारी फील्ड के जो फोकस है ना, सब में फोकस होना बहुत इम्पोर्टेंट है ना, सारे लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स में फोकस आना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। आपकी काम करने की, हमारी जो काम करने की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है ना, क्योंकि ऐसे हम बहुत सारी चीजें मन में चल रही होती है तो हम सोचते रहते हैं सोच के उन चीजों को बढ़ा लिया होता है। लेकिन जब मन फोकस में होता है तो हमें क्या लगता है यार, फटाफट अपना काम करते हैं, फिर हम अपना नाम जाप कर लेते हैं, है ना। अब हमारा मन थोड़ा सा काबू में आया कि नहीं अभी हम सत्संग करना है, नहीं अभी हमें चैंटिंग करनी है, नहीं अभी हमें भोग लगाना है ना, नहीं अभी हमें दीपदान करना है ना, तो क्या कर रहे हैं हम, धीरे धीरे अपने मन को कंट्रोल कर रहे हैं ना, है ना। तो अपने आप काम करने की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, घर के काम भी हो रहे हैं और ये सारी बातें भी हो रही हैं, तो पता है हमें भी सुबह उठना है, है ना, अब ये सारे काम करने हैं, तो भाई अपने घर के काम थोड़ी छोड़ देने हैं, वो भी करने हैं और साथ में ये भी करने हैं, है ना। तो नॉर्मली वर्ल्डली लाइफ में बहुत जल्दी लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे देखो, किसी ने मान लो प्लान किया आज कि मुझे कोई बच्चा, उसने IAS कर रहा है, वो है ना, वो उसको उसने सोचा कि आज मुझे अपने ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, है ना, अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी है ना। लेकिन उसका ध्यान अगर चले जाए कि मैं चलो टीवी देख लेता हूँ, क्रिकेट देख लेता हूँ, या लैपटॉप पे चला जाता है, फोन में चला जाता है, क्योंकि मन उसका काबू में नहीं होता उस वक्त। अगर वो इन चीजों में इन्वॉल्व रहता है, अगर वो, उसको पता है मैं IAS कर रहा हूँ, IIT का पेपर निकालना है मुझे, है ना, तो मुझे बैठ के, मुझे तो भाई कंटिन्यूसली पढ़, लेकिन IAS तो छोड़ो, वो अपने फाइनल एग्जाम भी नहीं, वो 10th भी नहीं क्लियर हो पाएगी उससे, उसके फाइनल एग्जाम है और वो बैठ के टीवी देखता है या फोन में लगा रहता है या दोस्तों के साथ लगा रहता है, तो ऑटोमेटिकली है कि उसका वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और वो उसका मन बहुत जल्दी भटक रहा है मतलब। लेकिन जब कोई योग में आगे चला जाता है ना, तो उसका फोकस फिर बहुत क्लियर हो जाता है ना, उसको समझ आ जाता है कि मुझे भाई ये टास्क करना है ना, तो फिर वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, उसको पता समझ आ जाती है कि मुझे ये काम करना है तो भाई करना है। उसने अपने मन को भाई कंट्रोल करना सीख लिया होता है, उसने बता दिया होता है मन को कि मुझे ये करना है ना, तो फिर मन उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, उसको मन फिर उसके अकॉर्डिंगली काम करने शुरू हो जाता है, फिर वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, फोकस उसका बेटर हो जाएगा, है ना। तो अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन को हम अगर देखें, अगर देखो उसको सिर्फ, उसको क्या दिखा था सबको, जब द्रोणाचार्य जी ने पूछा उनसे तो सबको क्या क्या दिख रहा है, तो किसी ने बोला मुझे पेड़ की टहनी दिख रही है, किसी ने बोला मुझे पक्षी दिख रहा है, किसी ने बोला मुझे पत्ता दिख रहा है ना, तो ऐसे ऐसे सबने बोला। तो अर्जुन को पूछा तो अर्जुन ने क्या बोला कि मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है ना। तो अर्जुन की तरह अगर पक्षी की आंख को एक हम लोग देखना शुरू कर देना, तो फटाफट उसके सारे काम फिर क्वालिटी से होना शुरू हो जाएंगे और बहुत कम समय में होना शुरू हो जाएंगे, है ना। चाहे वो फिर वो उसके कैरियर से रिलेटेड ड्यूटीज हो, है ना, चाहे वो फैमिली से लिंक्ड उसकी ड्यूटीज हो, तो ओवरऑल लाइफ में उसमें इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। देखो जितना जितना हम सत्संग साधना के रास्ते पर चलते चलेंगे ना, तो चाहे दुख का समय हो या सुख का समय हो, तो देखो जब हम सत्संग साधना के रास्ते में चल रहे हैं, है ना, चाहे दुख का समय आए या सुख का समय आए, अगर हम उलझ नहीं रहे, है ना, दुख का समय आया तो चलो सत्संग साधना छोड़ दो, सुख का समय आया, है ना, कोई मैरिज आ गई, कुछ आ गई, चलो यार मैं सत्संग ही छोड़ देती हूँ कि चलो मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पार्टी करने जाना है, मुझे शॉपिंग करनी है ना, तो अगर हमने छोड़ दी डिवोशन, तो समझो आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, है ना। तो अगर आपने सुख में दुख में आपने अपने मन को उलझाया नहीं है, तो समझ लो आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, और फिर आप अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को भी इससे आप असेस कर सकते हो कि भी सुख का समय आया था तो क्या मैंने अपने मन को कंट्रोल किया था, है ना, क्या मैं सत्संग साधना सेवा में लगी रही, है ना, या फिर मैं विचलित हो गई थी, है ना, और या सुख का समय आया तो क्या मैं सत्संग साधना के रास्ते में चलती रही कि या फिर मन ने फिर मुझे विचलित कर दिया। तो ये हमारी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है ना, उसको भी असेस करने का एक बहुत बढ़िया रास्ता है। हाँ जी, नेक्स्ट श्लोक पढ़ लो नीना जी।
हरी हरी बोल। श्लोक नंबर 26। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। हरी हरी बोल।
देखो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स है ना। इसमें हमें भगवान बता रहे हैं कि हमें क्लियरली, देखो हमें भगवान बता रहे हैं कि ये नहीं है कि मन अगर चंचल है तो उसको कहीं भी जाने दो, है ना। तो भगवान ने क्लियरली बताया हुआ है कि भाई मन बहुत चंचल है ना, वो बहुत भटका हुआ रहता है, उसका काम ही है देखो हमें भटकाना है। तो एज आत्मा भगवान ने हमें पावर दी हुई है ना कि हमें अपनी, हम अपनी बुद्धि को इंस्ट्रक्ट करें, और बुद्धि के पास वो पावर है कि वो मन को नियंत्रण में रखे, है ना। तो ये मत सोचो कि मन को आप पक्का कर लोगे कि नहीं मैं तो अब सत्संग कर लूंगी, साधना कर लूंगी, है ना, मेरे को, मैंने अगर सोचा है कि मैंने 8 माला करनी है, 16 माला करनी है, या मैंने भोग लगाना सीखा है, मैंने आरती करना सीखा है, मैं व्रत कर रही हूँ, है ना, या मैं सत्संग सुन रही हूँ, है ना, तो ये मत सोचो कि आप हमेशा करते रहोगे। देखो अर्जुन का मन पक्का था कि नहीं पक्का था कि उसको युद्ध करना है ना? बहुत पक्का मन था अर्जुन का, उसको सालों से वो तैयारियां कर रहे थे सब, है ना। तो क्या वो विचलित हो गया ना? चैप्टर 1 में हमने समझा था कैसे वो डिप्रेस हो गया, उसने अपने सब कुछ हथियार अपने छोड़ दिए कि नहीं इससे अच्छा तो यही है कि जो मेरे जो रिलेटिव्स है वो मुझे मार दे, है ना। तो इतना डिप्रेस हो गया था कि वो उनसे बिल्कुल ही उसने हथियार छोड़ दिए। ये थोड़ी था कि वो लड़ नहीं सकता था या वो डर गया, तो उसके मन ने उसको भटका दिया। देखो ये हमें बिल्कुल समझना है कि भाई कोई भी सिचुएशन आ जाती है, कोई भी सुख दुख, कोई भी देखो 2-4 सिचुएशंस होती है, कोई ज्यादा सिचुएशंस नहीं होती, है ना, कि कोई बच्चे का पेपर आ गया, या फिर आप कोई मैरिज में चले गए, या कोई घर का काम लगा हुआ है, या विचलित करने वाली कोई दुख वाली स्थिति आ गई, कोई बीमार हो गए, कुछ कोई घर में कोई बीमार हो गया, है ना। तो ये कुछ 4-5 चीजें ही हैं जो हमें, हमारे मन को बदल देती हैं। बच्चे का पेपर आ गया तो नहीं मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैंने बच्चे को पढ़ाना है, सत्संग कर नहीं मैं अटेंड कर सकती, है ना। तो ये 4-5 सिचुएशंस ही होती हैं कि जहाँ पे हमारा मन हमें भटका देता है। जैसे मैं अपनी, जैसे हम लोग हाउसवाइफ्स हैं, तो हम, मैं वैसे एग्जांपल ले रही हूँ, है ना। तो आपने अपने अकॉर्डिंगली देखना है कि कहाँ कहाँ पे आपको अपना मन भटकाता है। मन बहुत देखो हठीला है। अब देखो सत्संग का एग्जांपल ले लो, है ना, कि सत्संग का क्या, हमेशा आपको लगता है कि मैं ये 4 बजे वाला सत्संग हमेशा अटेंड करूंगी, है ना। कई बार हमें मन भटकाता भी कि नहीं यार चलो मैं शॉपिंग कर लेती हूँ, है ना, या कई बार दिल करता है कि चलो आज मैं, यार मैं सत्संग नहीं सुनती हूँ, टीवी देख लेती हूँ, है ना। तो ये क्या कर रहा होता है, ये मन हमें अपने रास्ते से भटका रहा होता है, है ना। तो हमें समझना है ना, तो जो थ्योरी में हमने समझा होगा ना कि ये मन हमें भटका रहा है, ये माया का अटैक है, तो हम फिर समझ भी पाएंगे चीजों को, और फिर हम मन को भटकने नहीं देंगे, कि हम मन को खींच के लाएंगे, नहीं नहीं मुझे सत्संग सुनना है भाई, मैं शांत होती हूँ, है ना, मुझे तेरे बहकावे में नहीं आना है, अब हमें ये सोचना है, है ना, फालतू की चीजों में मैं अंगेज रही हूँ, है ना, अब मुझे नहीं करना है, अब मुझे सत्संग सुनना है, साधना करनी है ना। तो हमें मन को खींचना है और फिर से उसको सत्संग साधना के रास्ते में लाना है ना। या जैसे जो भी आप प्रोडक्टिव काम कर रहे हो तो हमें वहां पे लेकर आना है ना। जैसे फॉर एग्जांपल दो फादर है ना, एक फादर है जो घर आया और 4 घंटे वो मैच लगा के बैठ गया, है ना, और दूसरा फादर है कि वो सोचता है कि चलो मैं बच्चे को पढ़ा लेता हूँ, यार क्यों टाइम वेस्ट करना है मुझे, मैं चलो कोई थोड़ी सफाई कर लेता हूँ, कोई अलमारी मेरी साफ करने वाली है तो मैं अपनी अलमारी साफ कर लेता हूँ, साथ में मैं हरिनाम कर लेता हूँ, है ना। तो किससे खुश होने वाले हैं भगवान फिर, है ना, और उसको भी खुशी होने वाली है कि जब उसका कोई प्रोडक्टिव काम निकलेगा, जब उसकी अलमारी साफ हो जाएगी उस फादर की, या वो बच्चे को पढ़ा लेगा, तो उसका एक बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा अपने बच्चे के साथ, है ना, और उसकी अलमारी भी साफ होगी और हरिनाम भी हो जाएगा, और मैच देख के क्या हो रहा है उसकी हेल्थ भी वीक हो रही है और वो टाइम वेस्ट हो रहा है। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं कि जैसे एक डॉग का मालिक होता है ना, उसने उसको पट्टा बांध के रखा होता है, मतलब उसमें एक रोप लगी होती है ना, जब हम उसको वॉक पे लेके जाते हैं, है ना, तो डॉग क्या करता है, वो इधर उधर भागने की कोशिश करता है, भटकने की कोशिश करता है ना, दूसरों को परेशान करता है, लेकिन जो मालिक होता है उसको फिर खींचता है, उसको ट्रैक पर रखता है कि हमने अभी वॉक कर, है ना, अभी हमें इस डायरेक्शन में चलना है कि तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, उसको खींचता है। तो वैसे ही हमें ये समझना है कि हम मन नहीं है, और आइडल सिचुएशन में जो मन हमारा है ना, वो हमारा दास है। पहले हमने ये समझना, हम सोल है और हम मन के, बुद्धि के मालिक है। और अब भगवान यहां बता रहे हैं कि जहां भी मन तुम्हें भटका रहा है ना, उसको खींचो और अपने वश में लाओ। देखो भगवान ने क्लियरली हमें बता दिया कि भाई हमें मन के अकॉर्डिंगली नहीं चलना है, और हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियरली देखो भगवान ने बताया हुआ कि अपने मन को खींचो और अपने वश में लाओ। तो इंटरनली देखो हमें ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, और हम सबके अंदर ये क्लैरिटी होती भी है, लेकिन जब हमारा मन हम पर हावी हो जाता है फिर हम समझते हैं कि जो मन कह रहा है हमें वो ही कर लेना चाहिए, है ना। तो फिर हम अपनी लाइफ को डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज के ले जाते हैं, है ना, और वेस्टफुल एक्टिविटीज में अपने आप को लगा देते हैं। जैसे अभी हम सत्संग का एग्जांपल लें, अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मैं सत्संग उस वक्त नहीं करती तो मैं 2 घंटे सोती थी, तो वेस्टफुल एक्टिविटी होगी ना, उससे क्या मिल रहा था मुझे, है ना, कोई सुख नहीं मिल रहा था, है ना, उल्टा और लेजी होकर उठती थी मैं, है ना। या हम टीवी देख लेते हैं, हम वही 3-4 एक्टिविटीज में जो हम हाउसवाइफ से उसमें एंगेज रहती है, हम टीवी देख लेते हैं, हम किसी से बात कर लेती है घंटों घंटों, है ना। तो अब इसी टाइम को मैंने डिवोशनल एक्टिविटीज में कन्वर्ट कर दिया, है ना, तो मन को कंट्रोल कर लिया ना कि नहीं नहीं मुझे ये करना है, मुझे इससे शांति मिल रही है, मुझे ये अच्छा लग रहा है। लेकिन जब हम भगवत गीता का ये ज्ञान लेंगे ना और अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना चाहेंगे ना, तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि जहां भी हमारा मन हमें भटका रहा है ना, उसको हमें वापिस खींचना है, उसको हमें वापिस लाना है ना, फोकस हमें अपना बढ़ाना है। अब फोकस को में हम कैसे ला सकते हैं मन को, सबसे पहले हमें देखो बहुत आसान तरीके कि जब आपको पता चला ना कि आपका मन भटक रहा है, है ना, तो क्या करना है, हमें चैंटिंग करना स्टार्ट कर देना है। जो भी आपको अच्छा लगता है मंत्र आप वो कर सकते हो, है ना, जैसे हमें हम लोग ये मंत्र करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो भी आपको अच्छा लगता है ना, जब भी आपका मन भटकाए तो आप उसको फोकस में उस मंत्र के थ्रू ला सकते हो। लेकिन पॉइंट ये है कि जब आपको लगे कि नहीं मैं दूसरे के बारे में गलत सोच रही हूँ, है ना, कोई भी नेगेटिविटी का ट्रैप में फंस रही हूँ तो मुझे नहीं सोचना है ये, तो फिर आप फिर चैंटिंग करना शुरू कर सकते हो, है ना, तो फिर वो उस नेगेटिविटी से अपने मन को निकाल सकते हो, तो आपका मन भगवान के नाम में लग जाएगा, है ना। तो हो सकता है कि उसके 2-4 मिनट फिर से भटक जाए, है ना, ये सब हम सबके साथ होता है। अब जैसे माला ही करने हम शुरू हुए, जब मैं स्टार्ट किया था मुझे याद है, जब मैं पहली माला पहले मैं ओम नमो शिवाय की करती थी, एक माला करती थी, उसके बाद मैंने 3 माला की, हरे कृष्णा वाले तो मैंने बहुत लेट शुरू की, जब आपको पढ़ाने लगी उसके बाद, मतलब नवंबर दिसंबर मंथ के बाद स्टार्ट किया, 1 माला से शुरू किया था, तो वो भी मुझे बहुत, मुझे लगता नहीं था मैं कभी इतना बड़ा मंत्र मैं कर पाऊंगी, और मैं देखती रहती थी माला निकाल के, यार कब खत्म होगी कब खत्म होगी, इतना लंबा मंत्र लगता था मेरे को, है ना। और आज वो टाइम है कि मेरा मन भी लग रहा है ना, और मेरे को अच्छा भी लग रहा है ना, तो अब फोकस बेटर हो रहा है, मन भी लग रहा है, मेरा मन लग रहा है तो इसलिए फोकस बेटर हो रहा है ना, मुझे लग रहा है कि ज्यादा ध्यान मेरा लग पा रहा है ना। ऐसे तो माला, एक माला करने में ध्यान मेरा 100 जगह भटकता था, लेकिन अब वैसा नहीं है। तो हमें क्या करना है, वही करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, है ना। ये सब हुआ कैसे, सब प्रैक्टिस से, 1 माला करने शुरू हुई, फिर 3 करने शुरू हुई, ऐसे से धीरे धीरे बढ़ाती गई, है ना। और जब भी भटक जाए उसमें भी मन, तो फिर वापस ले आओ उसको, फिर भटक जाए फिर वापस ले आओ, तो धीरे धीरे वो मन को भगवान के नाम से हम कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। फिर सेकंड थिंग है फोकस करने के लिए कि जो आप कर सकते हो, कि आपको देखो आपको हमेशा किसी ना किसी प्रोडक्टिव काम में अपने आप को एंगेज रखना है। देखो जब भी हम लोग जब ज्यादा रेस्ट के चक्कर में फंस जाते हैं ना, देखो जितनी जरूरत है बॉडी को रेस्ट करने की, कंफर्टेबल रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, है ना, 6 to 6 hours की, 7 hours की नींद कम बहुत होती है, है ना। तो बाकी जो टाइम होता है ना, वो हमारा जो रेस्ट एक्सेस में हो जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, हम ओवर थिंकिंग के ट्रैप में फंस जाते हैं, उसका फिर मन का क्या काम है, उसको भटकाने का काम है। तो एक इंडिविजुअल को अपने प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में एंगेज रखना चाहिए, एक व्यक्ति को अपने आप को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में एंगेज रखना चाहिए। जो भी आपको अपनी हॉबीज आप उसको कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको लगता है कि मेरे को, मैं पेंटिंग कर सकती हूँ तो आप पेंटिंग कर सकते हो, आपको कुकिंग अच्छा लगता है, आपको बेकिंग अच्छा लगता है, तो आप उसमें एंगेज कर सकते हो। आप देखो ये सारी चीजें आपको आपकी लाइफ के और बाकी कंपोनेंट्स को भी इम्प्रूव कर रही हैं, है ना। तो चाहे वो फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने की एक्टिविटी हो, है ना, जैसे आपको पता है कि मेरी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है तो मेरे को वॉक करने चाहिए, मुझे जिम जाना चाहिए, ना? तो आप उस एक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हो, है ना। या आपको लगता है कि मुझे वर्ल्ड वेलफेयर में कोई कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तो आप उस एक्टिविटी में एंगेज हो सकते हो, है ना। या आपको लगता है कि मुझे फैमिली हेल्थ को इम्प्रूव करने की जरूरत है, है तो आप उस एक्टिविटी में अपने आप को लगा सकते हो, है ना। और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए हो या मेंटल हेल्थ के लिए हो, जो भी आपको लगता है कि ये कंपोनेंट मेरा वीक है ना, तो आप उस एक्टिविटी में अपने आप को लगा सकते हो। है ना। तो जब हम अपने मन को किसी भी प्रोडक्टिव काम में लगाओगे ना चैंटिंग से, फिर वो नेगेटिव डिस्ट्रक्शन से वो बचा रहेगा, है ना। मतलब किसी भी एक्टिविटी में हम अपने मन को, अपने हॉबी में या कोई भी जो भी आपको अच्छा लगता है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी में लगाना है या चैंटिंग में अपने आप को लगाना है, है ना, कोई भी कंपोनेंट आपको ठीक करना है, तो उससे क्या होगा, ये जो हमारा माइंड है ना वो नेगेटिव डिस्ट्रक्शन से फिर वो बचा रहेगा। और फिर विद प्रैक्टिस आप रियलाइज करोगे कि उसकी जो भटकन है वो परसेंटेज में कम होती जा रही है, है? और जैसे जैसे मन की भटकन घटेगी आप एक पीसफुल लाइफ एक्सपीरियंस करना शुरू कर दोगे और अपनी लाइफ के सारे कंपोनेंट्स में आप अपने बेटर रिजल्ट देना शुरू हो जाओगे, है ना। देखो फोकस की बात हो रही है ना, तो मैं एक स्टोरी इसमें शेयर करूंगी कि आपने सुनी होगी स्टोरी वो, कि एक लेडी होती है ना, तो वो मंदिर जाती है रोज, है ना। तो मंदिर जाती है तो वो एक दिन पंडित जी को पूछती है कि पंडित जी मैं मंदिर गई लेकिन यहाँ तो बहुत शोर होता है, मेरा तो ध्यान ही नहीं लगता भगवान के, मैं क्या क्या प्रार्थना करूं, मेरा तो बिल्कुल भी ध्यान लगता, मैं रोज आती हूँ पर मेरा तो ध्यान नहीं लगता। तो पंडित जी क्या बोलते हैं उनको, पंडित जी एक गिलास देते हैं पानी का, बोलते हैं ये गिलास लो और पूरा भरा होता है, पूरा ओवरलोडेड ऊपर तक, है ना, तो आप इस मंदिर के ना चारों तरफ चक्कर लगाओ, है ना। तो वो लेडी मंदिर पूरा ग्लास भरा होता है, वो बोल नहीं पाती कितना भरा हुआ है, तो लेकिन फिर भी वो बोलती है कि चलो पंडित जी ने बोला तो मैं कर लेती हूँ, एक छोटा तो मंदिर है उसको चक्कर लगाना है, एक पूरा ध्यान से कि नीचे ना पंडित जी ने बोला तभी पानी बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए, तो वो पूरा चक्कर लगाती है फुल फोकस के साथ, है ना, बिल्कुल पानी उसका एक बूंद भी नीचे नहीं गिरती। तो वो आती है, वो पंडित जी को बड़ी खुश होती है कि मेरा एक भी बूंद पंडित जी पानी नीचे नहीं गिरा है, देखो, है ना। तो बोला फिर आप चक्कर लगा रहे थे तो आपको शोर सुनाई दिया बाहर का मंदिर में, जो इतना शोर मचाया है आपको सुनाई दिया। बोला नहीं मेरा तो ध्यान ही नहीं था ना शोर में, मेरा तो ध्यान ये पानी में था कि मैं मेरा पानी नीचे ना गिरे। फिर उस पंडित जी ने उसको समझाया कि भाई यही तो हम करते हैं, है ना, हमारा ध्यान तो होता नहीं, हमारा मन हमें भटका के रखता है, है ना। तो जब हमारा ध्यान भक्ति में होगा, स्पिरिचुअलिटी में होगा, या जो भी एक्टिविटी आप करना चाहते हो, है ना, जो अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करना चाहते हो, है ना, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, है ना, अगर हमारा फोकस होगा ना, हमारा मन होगा ना कि हमें अपने मन को खींच के लाना, उस लेडी ने बिल्कुल फोकस देखो किया कि मेरे को बस इसमें ध्यान देना है कि मेरे को पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए, है ना। तो हम मंदिर में जाएं, अगर हमारा फोकस रहे कि नहीं हमें, मैं क्या करने आई हूँ यहाँ पे, है ना, 2 मिनट आई हूँ, 5 मिनट आई हूँ, तो मुझे फुल फोकस के साथ अपनी प्रार्थना करनी है, भगवान को के रूप को देखना है ना। तो उस तरह से अगर हम भगवद गीता में हम जो पढ़ रहे हैं तो हम उन चीजों को अपने जीवन में अप्लाई करें, है ना, तो अपने आप ही हमारा मन भी कंट्रोल में होगा और एक बढ़िया हमारा फोकस भी आ पाएगा, है ना। तो ये छोटी सी स्टोरी थी, धीरे धीरे हमें देखना है कि आप रियलाइज करोगे, है ना, कि जो भटकन है ना हमारे मन की, है ना, जब हम नेगेटिव एक्टिविटीज से हम अपने आप को बचा पाएंगे ना स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में, या फिर अपनी जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है, है ना, अपनी हॉबी में जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें अगर हम लगाएंगे ना, तो हम रियलाइज करेंगे कि भाई हम सच में, हम फालतू की बातें तो हमारे मन में आती नहीं है, ये फालतू की बातें आती तभी हैं जब हम फ्री होते हैं, बहुत ज्यादा हमारे पास टाइम होता है और हम फालतू की बातें सोचते रहते हैं। तो हमें इस तरह से अपनी लाइफ के हर एक कंपोनेंट को में स्टेबिलिटी लानी है, बैलेंस लाना है, है ना, तो हमारी लाइफ अपने आप ही एक बेटर लाइफ होना शुरू हो जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो फ्रेंड्स रिव्यूज की तरफ बढ़ते हैं कि आज के सत्संग से आपने क्या सीखा और आपके कोई डिवाइन एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल एवरीवन। हाँ जी, हमेशा की तरह आज का सत्संग भी मोना जी बहुत ही दिव्य और आनंदमय था। आपने बड़े अच्छे से हमें ये दोनों वर्सेस बड़े डिटेल में करवाए। तो हम ध्यान योग का ये जो चैप्टर कर रहे हैं, इसमें आज जो वर्सेस कर रहे हैं उसमें हमारी ये लर्निंग्स बनी है कि जो जो मनुष्य भक्ति में, मतलब टॉप मोस्ट अवस्था में पहुंच गया है, तो उस पे जो संसारिक बाहरी गतिविधियां होती हैं उसके मन पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उनका अपने मन पर कंट्रोल होता है और उनका अपने जीवन के हर क्षेत्र में बैलेंस बना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे इस वर्ष इस श्लोक में हमने दीपक का उदाहरण समझा कि जैसे जब दीपक जल रहा होता है और हवा नहीं चल रही होती तो उसका प्रकाश जो है वो सीधा ऊपर की ओर ही जाता है, इधर उधर नहीं डोलता। यानी कि हमने इस यहाँ ये समझा कि जब हम भी अपने मन पर अगर कंट्रोल करना चाहते हैं और माया के बंधन में नहीं बंधना चाहते, बल्कि मायापति के अधीन होकर अपना जीवन जीना चाहते हैं, यानी अगर हमें आंतरिक शांति चाहिए तो इसके लिए जो है हमें अपने मन को साधना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हमारा मन कंट्रोल में नहीं है तो हम अपना लाइफ में जो है टाइम पास कर रहे होते हैं इधर उधर नेगेटिव एक्टिविटीज में। तो इसमें हमारी मेन लर्निंग यही बनी है कि यदि हम योग में आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें जो अपने जीवन के हर क्षेत्र में जो है बैलेंस बनाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब हमारा अपने मन पर कंट्रोल होगा तो हमें अच्छे बुरे की पहचान होगी। अगर हमारा मन इधर उधर भटकेगा तो हम अपनी बुद्धि से काम लेंगे कि नहीं, ये जो है ये चीज मेरे लिए सही नहीं है, हमें इस ओर नहीं चलना। तो इस यानी हमने ये समझा कि हमें जो अपने मन को साधना है, यानी मन पर कंट्रोल करना है, तो उसे हम केवल और केवल जो है डिवोशनल एक्टिविटीज से ही इस ओर आगे बढ़ सकते हैं, योग और भक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। तो हमें जो अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हैं उनको नित्य निरंतर बढ़ाते जाना है और बिल्कुल अपना फोकस इस बात पे रखना है कि इस समय हमारा मन कहाँ है। और जैसे कि मोना जी ने भी बोला, तो सच में फ्रेंड्स ये जो हरे कृष्ण का महामंत्र है, इससे हम अपनी साधना को भी बढ़ा सकते हैं और अपने मन पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। जब से हमने ये मैंने अपने पे मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब से ये मंत्र हम रेगुलर कर रहे हैं, सच में मन को बड़ी शांति मिलती है और मन कभी कभी भी इधर उधर नहीं भटकता। और इससे पहले क्या था, हमारी ओवर थिंकिंग की हैबिट थी, बस छोटी सी बात पे भी जो है हम इतने परेशान हो जाते थे, बिल्कुल लो फील करते थे। तो हमें जो है हम इस महामंत्र का जाप कर सकते हैं और अपने जो है अपनी भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें एक बात हमने ये भी सीखी कि भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जब हम भक्ति से विमुख हो जाते हैं, यानी कि प्रभु की ओर ध्यान नहीं देते, तो जो यानी हम जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि हमें जो है मतलब हमें अपने जीवन में अगर हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए तो इसके लिए भी हमें जो है अपने पे पूरा चेक रखना है। किसी भी जब हम मतलब हमें अपनी जो नेगेटिव एक्टिविटीज हैं उनसे बाहर निकलना है, और जो जब हम ऐसा करेंगे पॉजिटिविटी की ओर बढ़ेंगे तो पॉजिटिविटी की ओर भी हम जो है अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करके ही आगे बढ़ सकते हैं। तो जब हम इस ओर बढ़ेंगे, यानी योग की तरफ हमारा ध्यान होगा, अपने हम अपने मन को साधने की कोशिश करेंगे, तो हमारे ऊपर जो किसी भी नेगेटिव एक्टिविटी, जैसे कोई हमारी निंदा करे, प्रशंसा करे, इस बात का हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसमें हमने मेन बात यही समझी कि हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में जो है फोकस रखना है और बैलेंस बनाना है और अपने मन को साधना है, और इसे हम अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के साथ ही बढ़ा सकते हैं। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच नीना जी पूरा समराइज करने के लिए श्लोकों को, थैंक यू। तो ठीक है, फिर हम भजन की तरफ बढ़ते हैं।
हरी बोल। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अवगुण भरा हृदय है, अवगुण भरा हृदय है, इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। जय श्री कृष्णा।